नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कठिन समय में खाड़ी देशों के साथ सरकार के मजबूत संबंध वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा में सहायक हैं। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, राज्य को भूमि विवादों के जाल से मुक्त कराना सरकार का संकल्प। बेगूसराय में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ के बाद 6 अपराधी गिरफ्तार, कुख्यात मंगल सिंह घायल। और मौसम विभाग ने आज राज्य के दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीयों, विशेष रूप से केरल के लोगों की सुरक्षा उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री मोदी तिरुवल्ला में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों के साथ सरकार के मजबूत संबंध कठिन समय में वहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा में सहायक हैं।
गल्फ कंट्रीज के नेताओं से मैं लगातार संपर्क में हूं, वहां की सरकारों से हम लगातार बात कर रहे हैं। मैं आप सभी परिजनों को आश्वस्त करता हूं, आपके परिवारजन भले ही आपसे दूर हो लेकिन वो अकेले नहीं है। भारत सरकार इन देशों में रह रहे हर भारतीय के साथ है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सरकार देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में पेट्रोल और डीजल की खरीदारी करने तथा रसोई गैस की अनावश्यक बुकिंग से बचने की सलाह दी है। 5 किलोग्राम के सिलेंडर नजदीकी एलपीजी वितरकों के यहां उपलब्ध हैं और वैध पहचान पत्र दिखाकर इन्हें खरीदा जा सकता है। चिकित्सा उपकरण निर्यात संवर्धन परिषद के कार्यकारी निदेशक प्रवीण कुमार मित्तल ने सरकार के पेट्रो रसायन उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला पर सीमा शुल्क में छूट देने के निर्णय का स्वागत किया है।
हमारी जो कस्टम ड्यूटी की थी उनको हटाने से जो रॉ मटेरियल है वो कॉस्ट भी हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मैनेज कर पाएंगे और हमारी कॉस्ट को हम एड्रेस कर पाएंगे ताकि हमारे पैसे ना बढ़े और ओवरऑल हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है वो भी ना बढ़े आम आदमी के लिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले 2023 में पारित कानून को 2029 से लागू करवाने के लिए संसद का बजट सत्र 3 दिन बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कुछ राज्यों में जनसंख्या घटने पर सीटें कम होने की अफवाह पर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या में कोई कमी न हो।
पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से महिला आरक्षण का बिल पास किया था, वैसे ही 16, 17, 18 को 2 काम करने हैं। केरल हो, तमिलनाडु हो, बाकी राज्य हो, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, महिलाओं के लिए जो सीटें होगी वो अतिरिक्त सीटें बढ़ जाए, इतना बड़ा फायदा हमारे दक्षिण भारत के राज्यों को मिले, इसके लिए हम कानून संशोधन के लिए सत्र बुला रहे हैं।
केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत बिहार में अप्रैल महीने के लिए 3,30,00,000 मानव दिवस सृजन की स्वीकृति दी है। ग्रामीण विकास विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मनरेगा की जगह विकसित भारत जी रामजी योजना लागू होने के बाद नए सिरे से मानव दिवस की स्वीकृति दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य को भूमि विवादों के जाल से मुक्त कराना सरकार का संकल्प है और इस दिशा में ठोस कार्रवाई की जा रही है। मुंगेर में भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि सरकार ने राजस्व से जुड़े अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी है और इसमें लापरवाही और गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जमालपुर अंचल कार्यालय के सामने सैकड़ों महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों को जलाने के मामले में जिले के उप अपर समाहर्ता को जांच के आदेश भी दिए हैं।
जांच के लिए जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, जांच के लिए कहा गया है और जो लोग संलिप्त होंगे उस पर कार्रवाई होगी। कुछ लोग ये भरम में तैर रहे हैं कि सरकार बदलेगी, सरकार कल भी एनडीए का था, आज भी है, कल भी रहेगा और मोदी जी नीतीश जी के नेतृत्व में ही सरकार जनता के हित में सुशासन से समृद्धि और विकसित बिहार के लिए काम करेगा।
प्रदेश से विभिन्न देशों के लिए जल्द ही सीधी हवाई सेवा शुरू की जाएगी। सरकार ने नेपाल की राजधानी काठमांडू, शारजाह, बैंकॉक, कोलंबो और सिंगापुर के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिल चुकी है। इन रूटों पर विमान सेवा शुरू करने के लिए एयरलाइंस कंपनियों को 36 करोड़ रूपये से अधिक की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्ताव के अनुसार पटना और गया से काठमांडू, शारजाह, बैंकॉक, कोलंबो और सिंगापुर के लिए उड़ानें प्रस्तावित हैं। इस सेवा से प्रदेश में बौद्ध पर्यटन और रोजगार के लिए विदेश जाने वाले लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहटा एयरपोर्ट निर्माण कार्य और दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सूचना प्रावैधिकी मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि बिहार पूर्वी भारत के टेक हब के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्रेयसी सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र के सहयोग से राज्य में नए प्रौद्योगिकी केंद्र खोले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के समग्र विकास और रोजगार सृजन से जुड़े विषयों पर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान विशेष सहयोग का आश्वासन भी मिला है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। बेगूसराय में एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मुठभेड़ के दौरान कुख्यात अपराधी मंगल सिंह घायल हो गया, जिसका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने अपराधियों के पास से एक देसी पिस्तौल, कट्टा, 5 कारतूस और चोरी के आभूषण सहित कई सामान बरामद किए हैं। इधर दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र में आभूषण दुकान में पिछले दिनों लूटपाट की घटना के मामले की जांच के लिए विशेष अनुसंधान दल का गठन कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार चौधरी ने बताया कि मामले की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। मौसम विभाग ने आज राज्य के दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान धूल भरी आंधी चलने और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है।
दिनांक 5 अप्रैल 2026 को राज्य के दक्षिणी एवं उत्तर पश्चिम भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों औरंगाबाद, बांका, भभुआ, गया, जमुई, नवादा एवं रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान गया के शेरघाटी में सबसे अधिक 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। 38.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ शेखपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। पटना का अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पूर्वी चंपारण जिले के तुरकौलिया और रघुनाथपुर थाना क्षेत्रों में जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। अभी भी कई लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस बीच पुलिस ने बताया है कि फॉरेंसिक जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि मेथेनॉल से बनी शराब पीने के कारण लोगों की मौत हुई है। जिले में शराब माफिया के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। सुपौल जिले के सदर प्रखंड के लौकहा पंचायत में कार्यरत कार्यपालक सहायक निशा प्रियंका को रिश्वत लेने के मामले में बर्खास्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी सावन कुमार ने बताया कि निशा प्रियंका के खिलाफ जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर अवैध राशि की मांग किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच में निशा प्रियंका पर लगाए गए आरोप सही साबित हुए, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए उन्हें नियोजन मुक्त कर दिया गया है। नालंदा जिले में उर्वरक की कालाबाजारी और इसके वितरण में अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग की ओर से विभिन्न दुकानों और प्रतिष्ठानों पर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान 203 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 7 प्रतिष्ठानों पर अनियमितता पाई गई। इनमें 5 प्रतिष्ठानों का अनुज्ञप्ति निलंबित कर दिया गया है। ईसाई धर्मावलंबी आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। इस अवसर पर पटना स्थित पादरी की हवेली सहित प्रदेश के विभिन्न गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा और अन्य धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ईस्टर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रदेशवासियों को ईस्टर की शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित 69वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में बिहार पुलिस को स्वर्ण पदक मिला है। ट्रैकर श्वान लिली ने श्वान दस्ता प्रतियोगिता में यह उपलब्धता हासिल की है। लिली के साथ बिहार पुलिस के सिपाही घनश्याम चंद्रवंशी डॉग हैंडलर की भूमिका में थे। राजगीर में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने हिमाचल प्रदेश को 3-1 से हराकर पहली जीत दर्ज की है। लखीसराय में खेली जा रही 12वीं बिहार राज्य सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में मुजफ्फरपुर ने अरवल को 4-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं लखीसराय और कैमूर की टीमें भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सीतामढ़ी के डुमरा स्टेडियम में खेले जा रहे रणधीर वर्मा अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में सीतामढ़ी की टीम ने मुजफ्फरपुर को 3 रन से पराजित कर दिया। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। आज का दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ईरान ने बताया नया फार्मूला, मित्र मुफ्त में तटस्थ देश शुल्क देकर हॉर्मूज लांघेंगे। ट्रंप ने फिर दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। प्रभात खबर का शीर्षक है, युद्ध का असर, बिहार झारखंड और बंगाल के कारोबारियों को 1800 करोड़ रूपये का झटका। दैनिक जागरण ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के हवाले से लिखा है, बिहार की विरासत ने बुद्धिज्म, जैनिज्म और सोशलिज्म को दिया आकार। दैनिक भास्कर बिहार के सरकारी स्कूलों में एडमिशन से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखता है, एडमिशन का नया नियम, बिहार के सरकारी स्कूलों में नो एज गैप मॉडल लागू, अब उम्र से तय की जाएगी बच्चों की क्लास। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कठिन समय में खाड़ी देशों के साथ सरकार के मजबूत संबंध वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा में सहायक हैं। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, राज्य को भूमि विवादों के जाल से मुक्त कराना सरकार का संकल्प। बेगूसराय में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ के बाद 6 अपराधी गिरफ्तार, कुख्यात मंगल सिंह घायल। और मौसम विभाग ने आज राज्य के दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।